हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, बोलिए हरे कृष्णा। आप सबका संध्या जागृति कार्यक्रम में स्वागत है, नए वर्ष के पहले कार्यक्रम में। 4 जनवरी 2011 का ये हमारा इस साल का पहला संध्या जागृति है और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हर संध्या जागृति में आएंगे, जो लोग नहीं आए उनको भी लेके आएंगे और ऑन ड्यूटी भगवान को याद करने की कोशिश करेंगे। इतना बड़ा सौभाग्य और कहां प्राप्त हो सकता है। काम करते करते हम भगवान को याद करने का प्रयास कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो इस वर्ष के अंत में श्री श्री राधा गोपीनाथ मंदिर की ओर से दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न हुई, जिससे भक्त लोग अभी अभी लौट रहे हैं। बहुत अनोखी यात्रा थी ये। इस यात्रा का उद्देश्य ये था, या उसके पीछे जो भाव था ये था कि श्री चैतन्य महाप्रभु इन्होंने 500 वर्ष पहले संन्यास लिया, अपने उम्र के 24वें साल में, ठीक 1510 सन में उन्होंने संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद में विश्व का कल्याण करने के लिए उन्होंने अपने भाई विश्वरूप को ढूंढने के बहाने दक्षिण भारत की यात्रा की। उसमें वो तिरुपति गए, उसमें वो कांचीपुरम गए, उसमें वो रामेश्वरम गए, कन्याकुमारी गए, अनंत पद्मनाभ गए, तिरुकोष्टियूर गए, श्रीरंगम गए, वहां से मदुराई गए, मदुराई से महाराष्ट्र में आए, पंडरपुर गए। इस तरह से उन्होंने बहुत अनोखी दक्षिण भारत की यात्रा की। जगन्नाथपुरी से पूरे भारत के दक्षिण कोने तक जाकर वापस उन्होंने जगन्नाथपुरी तक यात्रा की। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि उस दक्षिण भारत की यात्रा में वो मलबार हिल भी आए, जहां पर बाणगंगा है। बाणगंगा में पता है आपको क्या हुआ? बाणगंगा मुंबई का एक बहुत मशहूर तीर्थ स्थान है। मुंबई का नाम जो है वो मुंबा देवी के ऊपर रखा गया है। मुंबा देवी का शहर मुंबई, मुंबा आई, माता मुंबा देवी, इसके ऊपर ये नाम पड़ा है शरीर शहर का। और संस्कृत में इस मुंबई का नाम है कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र, बहुत पवित्र स्थान है। और मलबार हिल नाम का पर्वत है समुद्र किनारे, उस पर प्रभु रामचंद्र जो है वो अपनी पत्नी की खोज में दक्षिण भारत की ओर जब जा रहे थे तो वो उधर आए थे। मध्यान्ह का समय था तो उस समय उन्होंने देखा कि गायत्री करने के लिए योग्य समय है, मध्यान्ह गायत्री जप करने के लिए। लेकिन मध्यान्ह गायत्री जप करने के पहले उनको मीठे पानी से आचमन करना जरूरी था, लेकिन सब जगह खारा पानी था समुद्र का। तो लक्ष्मण से उन्होंने कहा कि आप मुझे मीठे पानी की व्यवस्था करो। तो लक्ष्मण ने अपने वीर तरीके से, सामान्य आदमी का तरीका नहीं, वीर आदमी के तरीके से धनुष बाण निकाला और बाण पे गंगा जी का मंत्र अभिमंत्रित करके पत्थर पे बाण छोड़ा और वहां से गंगा माता प्रकट हो गई। और आज भी आप जाएंगे वहां पर तो आपको एक स्रोत मिलेगा, उस स्रोत में से पता नहीं कहां से पानी आ रहा है, अखंड पानी आ रहा है, त्रेता युग के समय से चल रहा है। और फिर उस मीठे पानी से, गंगा माता के जल से प्रभु रामचंद्र ने आचमन किया, केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, और फिर गायत्री जप किया। और उसके बाद में वो उत्तर की ओर चले, बंबई के बाहर आकर फिर दक्षिण भारत की ओर गए। उसी जगह पर चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने भी वहां पर कीर्तन किया बाण गंगा पे। बाण गंगा क्यों कहा गया? बाण से उत्पन्न हो गई गंगा, इसलिए बाण गंगा कहा गई। बहुत बड़ा तालाब है, बहुत बड़ा, इतना बड़ा तालाब बहुत कम होता है अन्य क्षेत्रों में भी। और चैतन्य महाप्रभु वहां पर कीर्तन करके उन्होंने दर्शन किया, वहां पे मंदिर है। और फिर वो मीरा रोड से गुजरते हुए नालासोपारा गए, और नालासोपारा में उनके चरण चिन्ह अभी भी हैं। आप नालासोपारा जाएंगे, यहां से दो स्टेशन आगे हैं, वहां पर उनके चरण चिन्हों का मंदिर है। और वहां से वो पंढरपुर गए, और वहां से फिर जगन्नाथपुर लौट गए। तो ये उनकी जो साउथ इंडिया की यात्रा थी उसको 500 वर्ष पूरे हो गए। इस उपलक्ष्य में यह यात्रा निकाली गई थी। और यात्रा की विशेष बात यह है कि सब जगह वो चलते चलते गए, कहीं रुके नहीं ज्यादा, एक दिन एक रात ऐसे रुकते गए। लेकिन श्रीरंगम एक क्षेत्र में वो 4 महीने रुके, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण बात है। अपनी पूरी साउथ इंडिया यात्रा में 4 महीने वो श्रीरंगम में रुके। और वो कहां रुके? वेंकट भट्ट नाम के श्री रंगनाथ जी के बहुत ही मशहूर भक्त थे, पुरोहित भी थे, पुजारी भी थे, उनके वंश में श्री रंगनाथ की पूजा आ रही थी। तो वेंकट भट्ट के घर पे वो रुके, और वेंकट भट्ट जो है वो लक्ष्मी नारायण के भाव में रंगनाथ की सेवा करते थे। कुछ कुछ सेवाएं अलग अलग भाव में होती है, कुछ राधा कृष्ण के भाव में सेवा करते हैं, उसको माधुर्य भक्ति कहते हैं। और जो लक्ष्मी नारायण के भाव में सेवा करते हैं उनको ऐश्वर्य भक्ति कहते हैं, पूरे ऐश्वर्य के साथ में। तो चैतन्य महाप्रभु उनके घर पे रुके, और चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं कि दिन भर चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट और उनके जो साथीदार थे, सभी संग वाले भक्त थे, उनको लेकर दिन भर श्रीरंगम के भव्य पटांगण में कीर्तन करते थे। आप देखेंगे कई शायद सैकड़ों एकड़ जगह होगी एक मंदिर की खाली, उसमें 8 दरवाजे हैं, 8 दरवाजे नहीं 8 दीवारें हैं, और एक एक दीवार, 2 दीवार के बीच में जैसे यहां से लेकर शायद वो है ना पेंट कर पड़ा उतना जगह है चौड़ाई के अंदर, बहुत लंबा ऐसे चौकोन 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 करके अंदर के चौकोन में फिर भगवान का विग्रह है, भगवान का गोपुरम है, और भगवान का विग्रह वहां पर विराजमान है। सब पूरा शहर है वो, मिनी मीरा रोड सब पूरा इस तरह से, जैसे आप समझ सकते हैं कि 2.3 किलोमीटर का जो चौड़ाई है पूरा अगर घेर जाए घिरा जाए तो एक शहर बनेगा ना छोटा सा, वैसा वो श्रीरंगम का मंदिर है। और उस मंदिर के जो चौकोन है पूरे उसमें इनका घर है वेंकट भट्ट का। इनके बाहर के भी और एक चौकोन है, उसके अंदर भी कई घर है, फिर अंदर भी चौकोन है, अंदर भी चौकोन है, ऐसे जो पुजारी पुरोहित रहते हैं वो सब उस चौकोन में रहते हैं, उसको घेरा कहते हैं, घेरा श्री रंगनाथ घेरा। जैसे वृंदावन में भी कहते ना सेवा कुंज घेरा, मदन मोहन घेरा ऐसा कहते ना, वो इलाके के अंदर बहुत सारे चौकोनों के अंदर वो निवास था उनका। दिन भर कीर्तन करते थे और रात को रात भर बैठकर वेंकट भट्ट, उनके भाई प्रबोधानंद सरस्वती और वेंकट भट्ट का पुत्र गोपाल भट्ट और ऐसे भक्त लोग मिलकर रात भर कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन करते थे। और ऐसा लिखा है कि बहुत ही अंतरंग लीला कृष्ण भगवान की, उसका रहस्यमय चर्चा रात भर चैतन्य महाप्रभु किया करते थे। और उसमें 5 साल के छोटे गोपाल भट्ट जी थे, वेंकट भट्ट के पुत्र हैं वो चैतन्य महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा करते थे, पर्सनल सर्विस, उनके पैरों को मसाज करते थे। और उनका हर रोज उनका जो भोजन है उसका बचा हुआ प्रसाद खाया करते थे। और 4 महीने का संग, सोचो आप, हर जगह पे एक एक रात रुकते थे, लेकिन एक जगह 4 महीने रुके, चतुर्मास्य। चतुर्मास्य यानी बारिश के समय कोई भी साधु संत जो है वो यात्रा नहीं करते, वो एक ही जगह रहकर अपना भजन करते हैं, व्रत भी करते हैं, उपवास करते हैं, हम भी वो चतुर्मास्य का पालन करते हैं। एक जगह 4 महीना रुकने के पश्चात गोपाल भट्ट जी बहुत आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु से। और जब चैतन्य महाप्रभु खत्म होने के पश्चात श्रीरंग क्षेत्र से चैतन्य महाप्रभु जाने लगे तो गोपाल भट्ट जी बहुत व्याकुल हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे, कि मैं भी आपके संग चलूंगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, भक्त के रूप में अवतार लिया उन्होंने और संन्यास लेकर लीला कर रहे थे, तो गोपाल भट्टी जी को वो कहते हैं कि आप अभी यहीं रहो, अपने पिताजी वेंकट भट्ट और माता की सेवा करो, जब यथावकाश उनका देहांत हो जाएगा तब आप वृंदावन में आ जाओ, तब मेरी मुलाकात आपसे होगी। तो 4 महीने उन्होंने संग में रहकर भगवान से आनंद लिया, सेवा किया, और उसके बाद विरह में सेवा किया। महाप्रभु चले गए अपनी दक्षिण भारत की यात्रा, आगे चलाते मदुराई चले गए, वहां से आगे चले गए, जैसे मैंने आपको बताया मार्ग कहां से कहां गए, और फिर जगन्नाथपुरी चले गए और वहां पर उन्होंने अंत लीला किया। 18 साल जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु ने अति उत्कट विरह भाव में भगवान का जगन्नाथपुरी का निवास किया। और तब उस समय गोपाल भट्टी जी का पिताजी का देहांत हो गया, माताजी का भी देहांत हो गया, उनकी सेवा से वो कर्तव्य पूर्ण करके मुक्त हो गए और महाप्रभु जी का आदेश याद करते हुए वृंदावन चले गए। जब वृंदावन चले गए तो चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में नहीं थे, जगन्नाथपुरी में थे, लेकिन उनको आदेश था वृंदावन जाने का, इसलिए जगन्नाथपुरी जा नहीं पाए। वो जा सकते थे लेकिन आदेश नहीं था इसलिए नहीं गए। हमको समझना बहुत जरूरी है, गुरुजी और भगवान के आदेश के पालन करने के अंदर उनकी कृपा होती है। हम तो कर बहुत सकते हैं, कर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। हम लोग गोपियां भी 10-12 किलोमीटर का अंतर पार करके वृंदावन से मथुरा में जाके कृष्ण को मिल सकते थे, लेकिन भगवान का आदेश नहीं था वृंदावन छोड़कर मथुरा उनको मिलने का, इसलिए वृंदावन में इतने पास में रहे उनसे, 100 साल तक रहे व्याकुल होकर, रोते थे 100 साल तक, तड़प तड़प कर उन्होंने बिताया अपना समय। लेकिन वो थोड़ा चलकर रोज जाते थे पहले मथुरा में घी दही बेचने के लिए, लेकिन गए नहीं। उसी तरह से गोपाल भट्ट की भी आदेश नहीं था इसलिए वो वृंदावन में रहे और विरह में व्याकुल रहे। तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको फिर जगन्नाथपुरी से अपना वस्त्र भेजा, अपना बैठने का आसन भेजा और उसको प्राप्त करके थोड़ा उनका विरह शांत हो गया। फिर भी विरह शांत नहीं हुआ पूरी तरह से। फिर प्रार्थना करते हुए भगवान ने उनको स्वप्न दिया और भगवान ने कहा कि आप पशुपतिनाथ चले जाओ। तो पशुपतिनाथ में उनको शालिग्राम शिला की प्राप्ति हुई और उन शालिग्राम शिला को वापस लेके आए वृंदावन में, तो उनमें से राधा रमण देव प्रकट हो गए। उसकी कथा मैंने आपको पहले बताई है। ऐसे गोपाल भट्टी साहब को गोस्वामी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के 6 प्रमुख गोस्वामी शिष्यों में से एक शिष्य थे, सबसे उम्र में छोटे थे और अकेले दक्षिण भारतीय थे। और उनके चाचा जो थे प्रबोधानंद सरस्वती, उनकी समाधि कालिया घाट पर है, कालिया घाट के पीछे उनकी समाधि है। साउथ इंडिया का आदमी, रंगनाथ जी का भक्त, उसका उगम रंगनाथ जी के परिवार में हुआ है। लेकिन वृंदावन में जब वो पहुंचे तो वृंदावन के इतने प्रेम में पड़ गए, वो इतने प्रेम में पड़ गए कि उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, 1,00,000 श्लोक लिखे उसके अंदर उन्होंने। क्या नाम है उसका? वृंदावन महिमामृत। ऐसा ग्रंथ लिखा है जैसे कोई किसी चीज के लिए आदमी पागल होता है ना कभी, उसको कहते हैं फैनेटिक, मतलब पूरी तरह से उस चीज के वश में हो जाता है, उसी के बारे में सोचता है, उसके बारे में लिखता है, उसके बारे में बोलता है, उसके बारे में विचार करता है, उसी के बारे में एकाग्र होकर उसी विचार में रहता है, इसको कहते हैं फैनेटिक। उस तरह का भाव था उनका। रंगनाथ जी के यहां पर उनका जन्म होकर भी वो वृंदावन में पहुंचने के बाद इतने आकर्षित हो गए, 1,00,000 श्लोक लिखे उन्होंने वृंदावन के गौरव के रूप में, वृंदावन की महिमा गाते हुए। ऐसा लिखा है कि वो व्यक्ति पागल होगा वो अगर वृंदावन के बाहर एक कदम रखेगा, उसका जीवन व्यर्थ होगा। ऐसे इस प्रकार के श्लोक लिखे हैं, हर लेख श्लोक में ऐसे ही लिखा है, वृंदावन की धूल के बारे में, वृंदावन के पक्षी के बारे में, वृंदावन के जानवर के बारे में, वृंदावन के रहने वाले ब्रजवासियों के बारे में, वृंदावन धाम के बारे में, हर चीज के बारे में वर्णन किया उन्होंने। तो ये वेंकट भट्ट जो थे, गोपाल भट्ट के पिताजी और प्रबोधानंद जी के भाई, ये ऐश्वर्य भक्त थे, लक्ष्मी नारायण के भाव में भगवान की भक्ति करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनको पूछते हैं, अरे आपकी लक्ष्मी जो है नारायण की पत्नी है, इतनी पत्नी पतिव्रता है वो, लेकिन हमने सुना है कि जब भगवान बंसी बजाते हैं रास लीला में तो ये भगवान के चरण कमल छोड़ के वो कृष्ण के पीछे भागती है, ये कैसी पतिव्रता है? ऐसे वेंकट भट्ट को प्रश्न पूछते हैं, ये सच बात है ना? हाँ, जब भगवान शरद पूर्णिमा की रात को बंसी बजाते हैं तो ये पति पतिव्रता पत्नी जो है वो चरणों को कभी छोड़ते नहीं भगवान को, उस दिन छोड़ के चले जाती है, रास मंडल में आने का प्रवेश करती प्रयत्न करती है, उसको मना किया जाता है। कैसी पतिव्रता है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, मजाक से पूछते हैं, इनका मजाक करते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसका उत्तर देते हैं कि लक्ष्मी जी और राधा रानी में कोई अंतर नहीं है, एक दृष्टि से देखा जाए तो राधा रानी का ही विस्तार है वो। तो नारायण के चरण कमल छोड़कर जब वो कृष्ण के लिए भागती है तो उसका पातिव्रत्य भंग नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण भगवान का ही विस्तार है, नारायण वही है वो। जैसे कि जब भगवान कृष्ण ऑफिस में आते हैं तो उसको विष्णु कहते हैं, नारायण कहते हैं, जब घर जाते तो उनको कृष्ण कहते हैं, जब कोई उनको कोई ड्यूटी नहीं होती केवल आनंद लेने का काम होता है तब वो उसको कृष्ण नाम से जाने जाते हैं। जब नारायण भंग आते हैं तो उनको सृष्टि का निर्माण करना पड़ता है, चर अचर सृष्टि को जीवन देना पड़ता है, फिर समय, जैसे आज हमने बताया सुबह समय का निर्माण कैसे हुआ, वो निर्माण करना पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य करना पड़ता है। ब्रह्मा जी निर्माण करके छोड़ जाते हैं, शिव जी कभी चाहे जब समय तक नष्ट कर देते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक इस सृष्टि का लालन पालन करने का बड़ा काम जो है मेंटेनेंस का, वो नारायण जी करते हैं। जब ऑफिस में आते हैं नारायण बन जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि लक्ष्मी का पतिव्रत जो है वो भंग नहीं होता है, वो अपने ही स्वामी के अलग रूप के लिए आकर्षित होकर तड़पती है और प्रवेश करना जानती है। तो ये श्री रंगनाथ क्षेत्र जो है इस पर चैतन्य महाप्रभु जो भगवान की माधुर्य भक्ति में थे, प्रेम भक्ति में लीन थे चैतन्य महाप्रभु, प्रेम अपमार तो महान, जीवन के चरम लक्ष्य के कार्य में चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान भक्त बनकर प्रेम लीलाओं में मग्न थे एकदम। इसका मतलब वृंदावन का भाव जो है वो लेकर वो पहुंच गए श्रीरंगम में, और वहां पर जो ऐश्वर्य भक्ति है वहां पर उन्होंने अपनी प्रेम भक्ति को प्रकट किया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का आना रंगनाथ क्षेत्र में बहुत अद्भुत घटना है, एक प्रेमी भक्त का ऐश्वर्य भक्त के साथ में मिलन है, और वहां पर संग हुआ है, उसमें कई लीलाओं का वहां पर वर्णन हुआ है। वो घर वहां पर अभी भी है, भगवान की असीम कृपा से पिछली बार जब यात्रा हुई 2005 साल में तो उसी घर में रहने का हमारा इंतजाम था, 4 दिन हम लोग वहीं रहे, जिस घर में रात रात भर बैठकर वेंकट भट्ट, गोपाल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु, प्रबोधानंद जी बैठकर कृष्ण लीला का रहस्यमय गुणगान करते थे महाप्रभु के सान्निध्य में, ऐसी अनोखी जगह आज भी वैसे के वैसे रखी है, उसको ये रेनोवेशन नहीं किया उसका, उसी प्रकार के खंभे हैं, उसी प्रकार का वहां पर गर्भगृह है, और उस गर्भगृह में चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ से जगन्नाथ की मूर्ति बनवाई, लकड़ी से बनवाई, और ये मूर्ति का फोटोग्राफ यहां पर है, ये यहां पर जगन्नाथ जी का मूर्ति है, एकदम बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये आज भी उसी घर के सामने एक छोटा सा मंदिर बनाया गया है जगन्नाथ मठ नाम का, उसमें उस मूर्तियों की पूजा करते हैं जो चैतन्य वहां पर अपने हाथ से बनवाई थी, और वो घर भी वहीं पर है, 500 साल के बाद भी वैसे बहुत सुंदर तरीके से उसको रखा गया है, सामने बैठने की जगह है, अंदर एक कमरा है, फिर अंदर एक बड़ा हॉल है, वहां पर बीच में मंदिर मंदिर है, उसमें चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति पहले हुआ करती थी, अभी वो जगन्नाथ मठ में है, वहां पर जगन श्री रंग क्षेत्र की जो मूर्ति है कस्तूरी रंगनाथ उसका वहां पर प्रतिकृति रखी गई है, उसकी पूजा की जाती है। उसके आगे जाएंगे तो घर में कुआं है, घर में गौशाला है, उधर गाय खड़ी रहती है, लेफ्ट साइड रसोई घर है, आगे जाएंगे एकदम तो अंतिम राइट साइड में उधर पत्थर का बना हुआ बाथरूम है, ओरिजिनल स्टाइल का एकदम पत्थर में बना हुआ है, और फिर लेफ्ट साइड में टॉयलेट है, बहुत खुली जगह है, बहुत लंबा सुंदर घर है, बहुत प्राचीन घर। तो रंग क्षेत्र जो है ये वैकुंठ माना गया है, भगवान का वैकुंठ धाम है। इसकी कथा ऐसी है कि जब भगवान ने सृष्टि का निर्माण किया तो सबसे पहले ब्रह्मा जी को जन्म दिया ना, कमल पे, नाभि से कमल निकला, कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी कुछ दिन कुछ समय पहले अंधकार में थे, अज्ञान में थे, तो उन्होंने उनको मंत्र दिया तो साक्षात्कार हुआ, उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया ब्रह्मा जी ने भगवान के आदेश के अनुसार। फिर ब्रह्मा जी ने सोचा कि मुझे भगवान की एक मूर्ति होनी चाहिए पूजन करने के लिए, तो उन्होंने बहुत साल तपस्या किया। उस तपस्या के फल के स्वरूप समुद्र से भगवान की यह मूर्ति प्रकट हो गई, श्री रंगनाथ जी की, शेषशाही भगवान की मूर्ति, यानी क्या, शेषनाग जो है उसका छत्र ऊपर पांच फन वाला और शेषनाग का शरीर से बना हुआ बिस्तर, ऐसे अद्भुत रूप में भगवान की यह मूर्ति जो आज श्री रंगनाथ में है वो समुद्र से प्रकट हो गई। ब्रह्मा जी ने कई हजारों साल उसकी सेवा की। ब्रह्मा जी के बाद में उन्होंने उसको मनु को दिया। आप जानते हैं मनु ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और 71 मनु होते हैं, 71 मनवंतर होते हैं, इस समय तक ब्रह्मा जी का समय चलता है। तो मनु इसकी सेवा करते हैं उसके बाद में। अब मनु के बाद में जो विवस्वान, पहले विवस्वान करते हैं जो सूर्य भगवान है, उसके बाद मनु करते हैं, उसके बाद मनु के पुत्र जो इक्ष्वाकु है, इक्ष्वाकु राजा बहुत मशहूर है क्योंकि इक्ष्वाकु राजा के एक वंश में ही श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ है। रघुवंश जो है, रघु राजा जो है, जो प्रभु रामचंद्र के पूर्वज हैं, वो भी उसी परिवार में जन्म हुए हैं। तो इक्ष्वाकु के बाद में, इक्ष्वाकु ने अपनी सेवा समाप्त करने के पश्चात जितने राजा हुए हैं प्रभु रामचंद्र के कुल में, उन सबने उनकी सेवा की है। फिर रामचंद्र प्रभु जी के पिताजी, प्रभु रामचंद्र के पिताजी दशरथ महाराज ने उनकी सेवा किया। और उसके बाद में ऐसे कहा गया कि इक्ष्वाकु राजा थे, उन्होंने उसको पृथ्वी पर लाया, तब तक वो स्वर्ग लोकों में थे। पृथ्वी पर लाने के बाद में उस सभी रामचंद्र भगवान के पूर्वजों ने उनकी सेवा की और प्रभु रामचंद्र ने भी उनकी सेवा की। लेकिन जब वो वनवास चले गए, कई साल तो वनवास में रहे, आप सब जानते हैं, फिर वो ब्रिज बनाकर लंका पहुंच गए, वहां पर उन्होंने रावण का वध किया, विभीषण को वहीं के राजा बना दिया लंका का। और कहते हैं कि सीता देवी ने एक प्रण लिया था, जब 9 महीने पूरे हो गए उनके, उनको किडनैप करने के बाद में, तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि 30 दिन के अंदर अगर प्रभु रामचंद्र नहीं आएंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। तो उसका लंबा गणित है पूरा कि जब भगवान को एक खबर मिली तो बहुत कम दिन बचे थे, उन्होंने 30 दिन का प्रण वहां पर लिया, लेकिन वो खबर पहुंचते पहुंचते बहुत दिन गए। तो ऐसे कहा कि 5 दिन में भगवान के बंदरों ने ब्रिज बनाया 800 मील का, 5 दिन में, मतलब समझते हो क्या 5 डेज, दिन में कितना बना होगा, 160 मील का ब्रिज उन्होंने एक दिन में बनाया, वे डे एंड नाइट 24 आवर्स, कोई नींद वींद कुछ नहीं बीच में। 800 मील का ब्रिज जो है एकदम सुपर फाइन हाईवे की तरह था, वो 5 दिन में बनाया। फिर 7 दिन का युद्ध हुआ और 7वें दिन रावण का वध हुआ, और वो 5 और 7 12 दिन जो है उस, तब तक 30 दिन खत्म हो चुके थे, वो 30th डे था। और 30वें दिन में उन्होंने रावण का वध करके तुरंत राजा बनाया विभीषण को। और उसमें और एक प्रॉब्लम था, जब ये 30 दिन खत्म हो रहे थे, उस दिन भरत के 14 साल खत्म हो रहे थे वनवास के, रामचंद्र भगवान के उन्होंने प्रण दिया था कि अगर आपकी आज्ञा है तो मैं आपके सेवा के रूप में राज्य को चलाऊंगा, अगर आपकी आज्ञा है तो मैं क्या कर सकता हूं, इसलिए आपके पादुका ले जाऊंगा और पादुका को सिंहासन पर रखकर अयोध्या के बाहर नंदीग्राम में एक झोपड़ी में रहकर आपके तरह ही वलकल, यानी कि ट्री बार्क, हाँ मतलब वो पेड़ के होते हैं ना, पेड़ की खाल होती है ना, उसको कहते हैं वलकल, पेड़ के खाल को ही खाली पहनते हैं बस वनवास में। तो जो रामचंद्र प्रभु ने पहना वनवास में वही धारण किया भरत महाराज ने, और जो रामचंद्र प्रभु ने खाया जंगल में कंदमूल वही उन्होंने खाया 14 साल, जटा धारण करके 14 साल जमीन पे सोना, केवल कंदमूल खाना, और केवल प्रभु जी के पादुकाओं को सिंहासन पर रखकर उनकी आज्ञा लेकर ही राज्य चलाना, वो भी राज्य के बाहर रहकर सन्यासी के रूप में, पत्नी होते हुए भी उसको राजमहल में रखते हुए उन्होंने ऐसा प्रण लिया कि मैं आपके जैसा ही रहूंगा। लेकिन कहा कि प्रभु भैया, अगर एक दिन भी 14 साल होने के बाद में आप अगर लेट हो जाओगे तो आप मुझे मरा हुआ पाओगे, मैं एक दिन भी जिंदा नहीं रहूंगा। तो जिस दिन 30वां दिन आया वहां का, जिस दिन 14 साल उनके पूरे हो गए, तो कितना इमरजेंसी था उनका। तो उन्होंने, रावण ने जो कुबेर से चुराया था पुष्पक विमान, मतलब वो 400 सीट का नहीं था, 70 लाख बंदर थे और कितने सारे बाकी लोग भी थे ना, जांबुवन थे और बहुत सारे लोग थे। तो सब लोगों ने निर्णय लिया कि अभी हमको चलना है अयोध्या में। तो समय कहां था अभी, अगर वापस चल के चलते श्रीलंका से ब्रिज के ऊपर 800 मील दक्षिण भारत कन्याकुमारी से, फिर रामेश्वर से, फिर अयोध्या, तो पता नहीं और कितने साल लगते उनको। इसलिए वनवास के नियम को तोड़ते हुए भी विमान में धारण हो गए। वो विभीषण से मांगा, महाराज विभीषण से, जब वो महाराज बन गए थे, उन्होंने कहा कि वो जो पुष्पक विमान है जो तुम्हारे भैया ने कुबेर से चुराया था वो मुझे दे दो, जो मन की गति से चलता है, पेट्रोल के बिना चलता है वो, उसके अंदर कोई एयर कंडीशन बंद नहीं होता है, ऐसे महल उसके अंदर, उसके अंदर नदियां, उसके अंदर तालाब, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे जंगल, फल, बहुत सुंदर सुंदर वन, फल फूलों से भरे हुए, खुली हवा, एकदम बहुत बढ़िया वातावरण। और वो मन की इच्छा के अनुसार बड़ा भी होता है, समझो लोग बढ़ गए तो और बड़ा हो जाता है, एकदम आराम से, बहुत बढ़िया से, इसको पुष्पक विमान कहते हैं। हाँ, तो 70 लाख जब बंदर चढ़ गए उसके ऊपर, तो बंदर की पत्नियां बोली हमको भी चलना है। अरे भाई, बंदरों ने इतना सेवा किया भगवान का। हाँ, बहुत बंदर उसमें मर भी गए, लेकिन भगवान ने उन पर जल छिड़क के सबको जीवन दान दिया। सब लोग बड़े खुश हो गए, वही नाचने लगे, उन्होंने बहुत सारा ध्वंस भी किया नाच नाच करते हुए, आनंद में, अभी आनंद में नाच रहे तो क्या भगवान बोलेंगे उनको। फिर चढ़ गए सब लोग पुष्पक विमान में, तो 70 लाख पत्नियों को भी प्रपोजल किया गया कि इनको भी ले लो, तो भगवान ठीक है, तो कितने हो गए, 140 लाख, 1,40,00,000, केवल बंदर ही बंदर थे, पति पत्नी मिलकर, और बच्चे उनके अलग प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण सब चढ़ गए, विभीषण भी चढ़ गए, हमको भी चलना है कि उनको भी देखना है अयोध्या का राज्य कैसा है, उधर क्या है सब, बहुत भगवान की, उनके आराध्य भगवान थे ना वो। तो सब लोगों को लेकर एग्जैक्टली वो दिन समाप्त होने के पहले वो अयोध्या नहीं गए, नंदीग्राम गए, जहां पर बैठे हैं उधर तैयार, आग लगाकर तैयार हैं, ये दिन खत्म होता है तुरंत वो आग में जाकर अपने जीवन को खत्म करने के लिए तले हुए थे, तुरंत जाकर वहां पर वहीं विमान को उतारते हैं और भरत जी को मिलते हैं। भरत जी बड़े आनंद से गले लगाते हैं भगवान को और पादुका वापस देते हैं, आप पहनो अभी आप संभालो अपना राज्य जो है। तो भगवान का राज्याभिषेक होता है और भगवान, बहुत लंबी कहानी है रामायण की। तो जब लौटने का समय आता है तो विभीषण जी को विदा करने के लिए भगवान कहते हैं अभी आप जाओ अपना लंका जी का राज संभालो, तो कहते नहीं आप हमारे साथ चलो, बोले हम नहीं चल सकते, हम तो अयोध्या में रहेंगे, नहीं कुछ हमको दे दो आपका स्वरूप। तो तभी भगवान रामचंद्र उनको रंगनाथ की मूर्ति भेंट देते हैं, बोले इसे ले जाओ, ये हम और ये इसमें कोई अंतर नहीं, इनकी सेवा करो, हमारी सेवा होती रहेगी और आप ले जाओ उसको। तो उसी उस समय के कई साल पहले से एक राजा थे धर्मवर्मा, वो रंगनाथ में रहते थे, रंगजी में, हाँ श्रीरंगम में, वहां पर तभी श्रीरंगम मतलब वो नाम नहीं था उस समय, भगवान थे ही नहीं वहां पर। वो धर्मवर्मा राजा तो थे, बहुत भगवान के भक्त थे और वो जानते थे कि ये मूर्ति जो है वो अयोध्या में है, कभी मेरे राज्य में आ जाए तो मैं उनकी भी कुछ सेवा कर सकूं। तो विभीषण जी उनको उठाकर ले आ रहे हैं और वहां पर उतरते हैं भगवान की इच्छा से। वहां पर धर्मवर्मा जो है बहुत अच्छी सेवा करते हैं उनके, कई दिन भगवान वहां रुकते हैं। तो फिर चलने का समय होता है तो विभीषण महाराज कहते चलो अभी हम चलते हैं इनको लेकर। धर्मवर्मा बड़े दुखी होते हैं लेकिन क्या करें, विभीषण महाराज ने लेके आए तो उनके प्रॉपर्टी है, वो ले जाएंगे अपने आप। लेकिन जहां पर उनको रखा गया था वहां से विभीषण दोबारा उस मृत्यु को उठा नहीं सकते, बहुत कोशिश करते हैं। आखिर में बहुत कोशिश करने के बाद में श्री रंगनाथ भगवान जो है वो विभीषण से बोलते हैं कि मैं धर्मवर्मा की प्रार्थना से बद्ध हो गया हूं, मैं उसकी इच्छा पूर्ण करना चाहता हूं, अब मैं यहीं रहूंगा, लंका नहीं आऊंगा, अभी आप लंके चले जाओ। तो बड़े दुखी होते हैं वो, तो भगवान को सांत्वना देते हैं, वो कहते हैं कि मैं मेरा मुंह जो है वो दक्षिण की ओर रखूंगा। आमतौर पर कैसा होता है, भगवान की कोई मूर्ति होती है ना उनका मुंह जो है पूर्व की ओर होता है, वैसे ही भगवान की स्थापना करते हैं। अगर आप ये गिरधारी मंदिर में जाओगे फिर भी आपको पता चलेगा कि भगवान का मुख जो है वो पूर्व की दिशा में, जहां पर सूरज उगता है वहीं भगवान का मुख है। लेकिन भगवान कहते कि मैं दक्षिण की ओर मुख रखूंगा मेरा, और मेरी नजर जो है वो तुम्हारे लंका पर रखूंगा, और वहीं से मेरे नजर से तुम पर कृपा बरसाता रहूंगा। उनका एक हाथ ऐसा है सिरहाने रखा है और एक हाथ ऐसा चरणों की ओर है। उसका अर्थ बताते हैं कि इनकी प्राप्ति करनी है तो उनकी सेवा करनी होगी, तो चरणों की ओर उनका हाथ है ना, चरणों की सेवा करेंगे तो मेरी प्राप्ति होगी। और वो दक्षिण की ओर रामेश्वर श्री रंगनाथ से उनका नजर जो है वो लंका पर है, विभीषण की लंका, जो विभीषण ने बहुत धर्म का राज्य किया ना, धर्म राज्य स्थापन किया, उस पर कृपा बरसाते हुए उन्होंने वहां पर निवास किया। सीता देवी पूछती है कि जब मुझे अशोक वाटिका में रखा गया था तो सब लोग राक्षस लोग बोलते थे कि जब से ये औरत आई है तब सब अपशकुन होने लगे, तो ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो लक्ष्मी हूं, जहां मैं जाती हूं वहां पर समृद्धि और शुभ शकुन होता है, और लंका में अपशकुन होने लगे, ये कैसे हुआ, ऐसे प्रभु रामचंद्र को वो पूछती है। तो प्रभु रामचंद्र कहते हैं कि तुम्हारे जाने से अपशकुन नहीं हुआ, रावण ने इतना पाप किया था, इतनी प्रवृत्ति खराब थी, इतनी पापी प्रवृत्ति थी उसकी प्रवृत्ति की वजह से उसके सर्वनाश के निर्देश में वो सब अपशकुन होने लगे थे वहां पर। वो कहते हैं ना कि जब भी रावण ने परस्त्री को भोग लेने का प्रयास किया, उसको शाप मिला था ना, कई परस्त्रियों को उन्होंने भोगने का प्रयास किया है, ये रामायण होने के बहुत पहले की बात है। रंभा को उसने विनय भंग किया था, रंभा जो थी वो नल कुबेर मणिग्रह की पत्नी थी, नल कुबेर की पत्नी थी, मणिग्रह की नहीं, जो कुबेर के पुत्र थे, अभी अभी कुबेर को हराकर उससे पुष्पक विमान चुराकर रावण लौट रहे थे, देखते रास्ते में रंभा को देखते हैं, रंभा बहुत सुंदर अप्सरा है, तो रंभा का विनय भंग कर देते, रंभा रोती है बहुत, नल कुबेर श्राप देते रावण को, ब्राह्मण है वो भी, कि इसके आगे तुम कभी भी किसी की स्त्री की इच्छा के खिलाफ अगर उसको भोगने का प्रयास करोगे तो तुरंत मर जाओगे। तो उसके बाद में जबरदस्ती किसी का भोग लेना उसने बंद कर दिया, लेकिन वो इतने सुंदर था रावण, इतना इतना सुंदर और इतना पराक्रमी, इतना विद्वान और इतना महापराक्रमी सिद्ध पुरुष था वो, तो उसके कहने से ही स्त्रियां उसमें वश में आती थी, कई हजारों रानियां थी उसके पास, जहां जहां गया वहां से जो जो अच्छा लगा उसको ले लिया उसने पत्नी के रूप में। और सीता जी को जब उठाया तो पता था कि सीता जी जब तक मैं उसकी इच्छा नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। तो जब उसने सीता देवी का भोग लेना चाहा, साक्षात भगवान की लक्ष्मी को भोगना चाहा, तभी उसका अंतकाल पास में आया, और तभी वो लंकिनी देवी थे, लंकिनी देवी जो लंका की रक्षा कर रही थी, हनुमान जी उसको तमाचा मारते हैं, पहले वो हनुमान जी को तमाचा मारती है, हनुमान जी अरे मैं तो ब्रह्मचारी हूं, ये औरत मुझे तमाचा मार रही है, ये कैसा हो सकता है, तो उसने भी तमाचा लगाया उसको, जैसे तमाचा लगाया तो वो बेहोश हो गई, इतनी भयंकर राक्षसिन थी वो, तो जैसे ही वो बेहोश होकर गिर गई और होश में आके खड़ी हो गई, बहुत खुशी हो गई उसको, अरे मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुम्हें मैं श्राप देता हूं राक्षस बन के रहो, लेकिन जब एक बंदर आके तुमको मारेगा और तुम बेहोश हो जाओगी तब समझना कि तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, और जिसकी रक्षा तुम कर रहे हो वो लंका का ध्वंस हो जाएगा। तो बड़ी खुश होती हो, बोले बालक तुम्हें मेरा आशीर्वाद है, तुम जाओ लंका में बिंदास एकदम घूमो, जो करना है करके आ जाओ, मैं आज समझ गई हूं कि तुम्हारा आना, मुझे मारना, मेरा बेहोश होना, ये लंका के ध्वंस का एक सिग्नल है। तो प्रभु रामचंद्र बताते हैं सीता देवी को, तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है, और तुमको अभी दुख भी लग रहा है कि तुम्हारी वजह से पूरे लंका का नाश हो गया वगैरह वगैरह, कोई बात नहीं, रंगनाथ के रूप में मैं यहां पर रहूंगा और मेरी दृष्टि लंका पर हमेशा रखूंगा और शुभ शकुन वहां पर हमेशा होता रहेगा। अभी हमने सुना, हमारे एक मित्र है वृंदावन के, मित्र मतलब बहुत बड़े बुजुर्ग हैं वो, हमारे वंदनीय हैं प्राण गोपाल आचार्य, उन्होंने ये जो मंदिर है ना जुहू का राधा रास बिहारी मंदिर, उस मंदिर के मूर्तियों की स्थापना उन्होंने की है, जो वृंदावन का कृष्ण बलराम मंदिर है उस कृष्ण बलराम की मूर्तियों की स्थापना भी उन्होंने की है। ये जो प्राण गोपाल जी आचार्य है, इनके एक पुत्र हैं सलील कृष्ण गोस्वामी, उन्होंने अभी लंका में पिछले महीने में लंका की जो अशोक वाटिका है वहां पर भागवत कथा की 7 दिन की। तो मैंने कहा अभी भी अशोक वाटिका है, अशोक वाटिका है, सब कुछ है, बहुत पवित्र स्थान वहां पर है, देखने लायक जगह है, विभीषण के भी वहां पर कई स्थान है। तो जो राक्षस लोगों का जो निवास और प्रभाव था वो रावण के मरने के बाद खत्म हो गया। राक्षस कुल रहा लेकिन राक्षस भावना नहीं रही, राक्षस प्रवृत्ति नहीं रही। राक्षस कुल में जन्मा हुआ राजा जो था विभीषण परम वैष्णव था, उसका राज्य आने से सभी जो अपशकुन पाप प्रवृत्ति सब नष्ट हो गया। एक सुंदर कहानी आती है विभीषण के जीवन में। विभीषण भगवान का भक्त था ना, वो लंका में रहते हुए क्या डेरिंग थी उसकी, लंका में रहते हुए रावण का शत्रु प्रभु रामचंद्र का नाम जपता था वो, उसकी पत्नी भी जपती थी, उसके घर के ऊपर शंख चक्र पद्म गदा जो विष्णु के चिन्ह है, जो राम के चिन्ह है, जो रावण के शत्रु हैं, वो चिन्ह उसने अपने घर पे लगाए हुए थे। उसी को देखकर तो हनुमान जी उतरे थे ना, अरे यहां पर तो ये चिन्ह कैसे, शायद कोई वैष्णव का घर होगा। और आगे जाके देखा तो राम राम का आवाज भी सुना उसने। फिर अंदर गए देखा तो विभीषण जी बैठे, रावण का भाई, हाँ सगा भाई रावण का, कितनी डेरिंग थी उसके अंदर। तो उसके अपने घर में सब जगह राम राम लिखा था, तो रावण को बहुत गुस्सा आया, वो घर पे आया उसके, देखी क्या हिम्मत है आपकी ऐसी कि आप मेरे शत्रु का नाम अपने घर के कोने कोने में लिख रखा है आपने। हम किसका नाम लिखते हैं घर पे, जिसको हम पूछते हैं वंदनीय हमारे लिए आदरणीय उसका नाम लिखते हैं ना, आप अपने शत्रु का नाम लिखे रखा है। बोले भाई बड़े भैया महाराज रावण, ये शत्रु का नाम नहीं है, रा और म रावण मंदोदरी इनका नाम है ये। राम 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 सब जगह पे लिखा है, मैं हमेशा रावण मंदोदरी रावण मंदोदरी ऐसा ही सोचता हूं, ये सब लिखे रखा है, आप भी अपने घर में सब जगह लिख सकते हो। उसके बाद में पूरी लंका में सब जगह राम 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 नाम लिखा गया। भक्त लोग ऐसे होते हैं जिनको भगवान का नाम लेना होता है उनके लिए हजारों बहाने मिल जाते हैं उस नाम को लेने के लिए, और जिनको उनका नाम नहीं लेना होता है, जो आलसी होते हैं नहीं लेना होता है उनको, उनको नहीं लेने के लिए भी बहुत हजारों बहाने होते हैं। प्रभु जी क्या करेंगे, प्रभु जी बीमार रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है, बीपी बढ़ता है, पेट में दुखता है, और ये ऐसा है फलाना घर में कष्ट है, लोन है, पिताजी बीमार है, माताजी भी कष्ट में रहती है, पत्नी ठीक नहीं रहती है, बच्चे बहुत उधम मचाते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं। प्रभु जी कैसे जब करेंगे भगवान के नाम का, कैसे करेंगे? जब अच्छा समय आएगा तो करेंगे, अभी तो हंसने खेलने के दिन है, अभी कैसे हम जब करेंगे। ऐसे हजारों बहाने मिलेंगे आपको नहीं करने के लिए भी। लेकिन विभीषण का उदाहरण देखो आप, विभीषण राक्षस कुल में जन्मा हुआ है, सारा परिवार राक्षस है उसके, आगे पीछे राइट साइड लेफ्ट साइड फ्रंट बैक सब राक्षस, सब भगवान के खिलाफ, बड़ा भाई चक्रवर्ती सम्राट सभी राक्षसों को वश में करके रखा है, अखिल ब्रह्मांड के स्वर्ग के देवताओं को भगा के रखा है उसने, भयभीत करके रखा है, ऐसा महापराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट उसका भाई वो भी राक्षस है, ब्राह्मण का पुत्र, विश्रवा मुनि का पुत्र है वो, पुलस्त्य मुनि के वंश का विद्वान ब्राह्मण है वो, लेकिन प्रवृत्ति राक्षसी। ऐसे प्रतिकूल स्थिति में रहते हुए भी जहां भय है कदम कदम पर, शत्रु का नाम लेंगे तो उधर वध हो सकता है, ऐसी जगह रहकर वो भक्ति कर रहा है, हमारे लिए एक सीख है, ये शिक्षा है हमारे लिए, क्या कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई भौतिक बाधा नहीं है, देयर इज नो मटीरियल इम्पेडिमेंट इन चैंटिंग एंड सर्विंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। भगवान का नाम लेने में और भगवान की सेवा करने में कोई भौतिक बाधा नहीं आ सकती है, यू कैनॉट से कि ये कारण है वो कारण है ये बाधा है, कोई बाधा नहीं आ सकती है। भगवान का नाम दिव्य है, भगवान दिव्य है, उनकी सेवा भी दिव्य है, और कोई भी चीज को रोक नहीं सकती है। तो ऐसे विभीषण का उदाहरण है, तो ये विभीषण भगवान की इच्छा को सिर आंखों पर रखकर, देखो कहां से उन्होंने भगवान को लाया, अयोध्या से लाया ना, इतनी अपेक्षा से लाया होगा उन्होंने कि मेरे धाम चलेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि रामचंद्र जी ये मेरा राज्य नहीं है, ये आपका राज्य है, आपको यहां का राजा होना चाहिए। तो हृदय से उन्होंने लंका को भी प्रभु रामचंद्र का ही राज्य माना कि ये मेरे प्रभु का राज्य है, और प्रभु की स्थापना होनी चाहिए, प्रभु का ही मूर्ति होना चाहिए, केंद्र स्थान में होना चाहिए। इस भावना से वो अयोध्या से उस भेंट को लेकर लंका तक पहुंचने का उनका प्रयास था, लेकिन जब भगवान ने स्वयं कहा कि मैं यहीं रहूंगा तो दुखी हो गए, लेकिन फिर भी भगवान की आंखों को सर आंखों पर रख के चले गए, उस विश्वास रखते हुए कि मैं तुम्हारे राज्य को देखूंगा और वहीं से तुम्हारे राज्य पर कृपा वर्षा करते रहूंगा। ये है भक्त। लगे मैं क्या करूं भैया, मैं राक्षस हूं, मेरा भाई राक्षस है, कैसे कर सकता हूं मैं, जब मर जाएगा तो सोचूंगा उसके बाद में जब करूंगा, नहीं, जीवन बहुत छोटा है हमारा। आज समय पे हम समय के बारे में बात कर रहे थे, जीवन बहुत छोटा है, इसमें समय बहुत कम है. यू कैन नॉट वेट फॉर टुमारो, कल या बाद में या परसों या अगले साल या अगले, इसमें वेट नहीं कर सकते हम लोग. समय बीतते जा रहा है. इसलिए वो जानते थे कि राक्षस हुआ तो क्या हुआ, मेरे प्रभु की मैं सेवा करूंगा, प्रभु को मेरी चिंता होगी तो मेरे रक्षण करेंगे, मुझे बचाना प्रभु के हाथ में, मेरा जीवन प्रभु जी के हाथ में, मैं उनका नाम जपूंगा और मेरी सेवा, मेरी उनकी सेवा करते रहूंगा, और मेरे रक्षण अगर चाहेंगे तो वो करते रहेंगे, अगर मारना चाहते तो मार सकते हैं, और जिंदा रखेंगे तो नाम जप करते रहेंगे. कितना अनोखा उदाहरण है, कितना बड़ा चरित्र है उनका. ये रामायण के अंदर लक्ष्मण का चरित्र देखो आप, भरत जी का चरित्र देखो, प्रभु रामचंद्र का चरित्र देखो, विभीषण का चरित्र देखो, कितना उच्च चरित्र है इनका. व्हाट अ पर्सनालिटी एंड कैरेक्टर. तो ये श्रीरंगम जो है, फिर धर्मवर्मा राजा ने, जिसका भाग्य था भगवान वहीं रुक गए, तो उसने बहुत बड़ा मंदिर बनाया और कई हजार वर्ष तक सेवा किया भगवान की. उसके बाद आप जानते हैं भगवान समय के अनुसार अपने आप को लुप्त कर देते हैं, प्रकट कर देते हैं, लुप्त कर देते हैं. तो जैसे युग समाप्त हो गया और कलयुग का शुरुआत हो गया, तो धर्मवर्मा के जो बहुत सारे वंशज है उन्होंने भी सेवा किया. लेकिन एक समय पर समुद्र किनारे में था ना, ये सब कावेरी नदी के किनारे में है, कावेरी नदी के किनारे में बड़ा टापू है, वो टापू के अंदर श्रीरंगम है. तो तूफान आता है और पूरा वालू जो है वो उसको कवर कर देता है, इतना भव्य मंदिर बांधता है ना वो. मैं आपको बताने एक बात भूल गया कि प्रभु रामचंद्र के साथ पास से जब ये मूर्ति लेकर आया था विभीषण, तो वो एक सुवर्ण का विमान भी लेकर आया था. सुवर्ण का विमान का मतलब क्या है, विमान का मतलब एक होता है हवाई जहाज, और एक विमान का अर्थ ये भी है जो होता है ना घुमट जैसा होता है ना, बड़ा कमान बड़ी होता है हमारे हॉस्पिटल के अंदर है ना, वो उसको विमान कह सकते हैं आप. वो हॉस्पिटल के ऊपर रखा हुआ विमान है, उसके ऊपर एक बनाया हुआ छत्र है. तो वैसा सुवर्ण का छत्र जो है वो भी लेकर आए थे वो. तो उस सुवर्ण के छत्र को लेकर धर्मवर्मा ने बड़ा मंदिर बनाया. वो जो विमान है आज भी श्रीरंगम में मौजूद है, आप दर्शन कर सकते हैं उसका, अभी भी मंदिर के ऊपर है वो, भगवान उसके नीचे विराजमान है. मंदिर का निर्माण किया, फिर सब कुछ जो है वो रीति के अंदर चला गया और लुप्त हो गया. कई पीढ़ियों के बाद में धर्मवर्मा का जो वंशज है उसको एक तोते ने आके बताया कि मुझे निकालो, मैं इसके नीचे हूं. इसे तोते ने भगवान की संदेश दिया उनको. तो धर्मवर्मा के उस वंशज ने खुदाई किया बहुत देर तक, और धीरे धीरे वो विमान मिला उनको पहले, फिर विमान के बाद में धीरे धीरे उन्होंने पूरा रंगनाथ जी का मूर्ति प्रकट किया. अब तभी बहुत जंगल था पूरा उधर, कुछ ऐश्वर्य सब खत्म हो गया था, पूरा मंदिर मंदिर सब नष्ट हो गया था. तो उसके मन में इच्छा, वो तो राजा नहीं था उस समय, वो तो एक आम व्यक्ति था, लेकिन राजा का वंशज था. अभी भी हमारे देश में है ना शिवाजी महाराज भोसले के वंशज जो है, अभी तो ऑर्डिनरी बिजनेसमैन है, मतलब एक सिंपल मैन, लेकिन राजा के वंशज है इसलिए अभी तो राजे बोलते हैं. तो वैसे वो सिंपल था लेकिन राजा का वंशज था, तो वो बेचारा गरीब था, उसने सोचा कि चलो मंदिर बनाया जाए. लेकिन कलयुग का प्रभाव इतना उस समय था कि सब लोग भगवान को भूल गए थे पूरे, बहुत लोगों के पास धन था, सोचा कि चलो धनी आदमी के पास जाके धन मांगेंगे और इकट्ठा करके मंदिर बनाएंगे. तो एक आदमी के पास गए तो उन्होंने कहा, क्या भगवान भगवान की बात करते हो, कुछ भगवान कुछ नहीं, आनंद करो ऐश करो, कुछ नहीं पैसा देंगे आपको. दूसरे के पास गए, धनी के आदमी, बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन बोल ही रहे हैं कि हम लोग नहीं करेंगे. तो इनकी श्रद्धा और जिद देखे हुए चार लोग उनको मिले. ध्यान से सुनना आप, वो चार लोग कैसे थे. वो चार लोग उनकी सिंसियरिटी को देखते हुए उन पर आकर्षित हो गए. अरे इतना सिंपल आदमी लेकिन कितना तीव्र इच्छा है, जगह जगह जाके भिक्षा मांग रहा है और यश नहीं मिल रहा है उसको, भिक्षा नहीं मिल रही, धन नहीं मिल रहा है, तो भी उनको जुड़ गए. तो महाराज जी आप चिंता मत करना, हम चार लोग बहुत विशेष आदमी लोग. बोले एक के बाद मेरे, एक पहला बोलता है कि मेरे पास सिद्धि ऐसी है कि मैं किससे बात करूंगा ना तो एकदम वो मोहिनी में पड़ जाएगा, मतलब व्हाट इज इट कॉल्ड, हिप्नोटाइज्ड. जब मैं किससे आंखों में आंखे लगकर बात करने लगूंगा तो पूरा मग्न हो जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, मेरे ही बातों में गुम हो जाएगा वो. दूसरा कहता है कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि किसी की छाया अगर मैं मेरा पांव रखूंगा उसके ऊपर ना, तो वो आदमी वो उधर ही फिक्स हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. मैं छाया पर खाली पांव डालूंगा तो आगे मुड़ नहीं पाएगा आदमी वो. तीसरा आदमी बोलता है मेरे पास सिद्धि ऐसी है कि मेरा हाथ हजारों मील लंबा हो सकता है और मैं कहीं से भी कुछ उठा सकता हूं, जहां मर्जी आए मेरे को, चलो मेरे को वहां से 15वें माले से कुछ लेना है उस घर से, तिजोरी में से, तो मेरा हाथ वहां तक जाके वो चीज निकाल के लेके आ सकते हैं। ऐसे सिद्धियां, तो हम आपको हेल्प करेंगे। सब चाहते हैं भिक्षा मांगने के लिए, फिर कोई उनको भिक्षा देता नहीं है। अरे तो वो सब पांच लोग मिलकर डिसाइड कर दे कि अभी ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं है, भगवान का मंदिर तो बनाना ही बनाना है। आपकी इच्छा को देखकर हम लोग प्रभावित हो गए, हम भी उसी इच्छा में कि हम भी करेंगे, हम लोग अच्छा प्लान करेंगे। अभी ये लोग सही तरीके से मानते नहीं है तो इनको लूटेंगे हम लोग। मैं जाऊंगा पहले उस धनी आदमी के घर पे और मैं बात करना आरंभ करूंगा, वो पूरा मोहित कर दूंगा उसको। जब वो गुंग हो जाएगा, पूरा मग्न हो जाएगा, तो हम तीन लोग जाएंगे और सब तिजोरी बजोरी फोड़ के। अच्छा, चौथा आदमी था, वो कहता है कि मेरे पास ऐसी सिद्धि है कि मैं किसी भी ताले पर फूंक मारूंगा वो ताला टूट जाएगा। ऐसे मेरे पास सिद्धि है, कोई भी दरवाजा कड़ी कुंडी मुझे रोक नहीं सकती है, जहां पर मैं जाऊंगा फूंक लगाऊंगा तो सब टूट जाएगा और खुलते जाएगा सब। तो जैसे ही उनका प्लान चालू हो गया, हर जगह जाना, धनी आदमी को पकड़ना, पहला आदमी उससे बात करने में मशगूल कर देगा उसको, दूसरा आदमी आएगा फूक मारेगा ताला खोलेगा, हाथ डाल के सब कुछ लेके, अगर कोई बीच में आया तो उसके छाया पर पांव रख के उसको ब्लॉक करके भागते थे वो। किसी के घर में गए, उसके घर में सोने के कलश थे उसको काटते थे वो, क्या क्या करके। एक ही लक्ष्य था उनका, एक भी रुपया अपने जेब में रखा नहीं उन्होंने, सब जो है 100% भगवान का मंदिर लगाने में, बस दिन भर वो करना। तो उसको देखिए ना, 1000 लोग अट्रैक्ट हो गए उनकी तरफ, एक से एक बड़े माहिर लोग, चोरी करने में एकदम सफल कुतर, एकदम कुशल, ऐसे बड़ी गैंग उसमें अट्रैक्ट हो गई। और सभी लोगों को इसने प्रभावित किया कि नहीं, भगवान का मंदिर बांधना है। चोर थे वो, लेकिन वो केवल अभी चोरी करेंगे भगवान के लिए। तो आप सोच सकते हैं, 1000 चोर श्रीरंगम में सब जगह घूम रहे हैं, कहां घुसेंगे, कहां किसको मोहित करेंगे, कब तिजोरी साफ करके चले जाएंगे, सब भय फैल गया सब जगह पे। तो बड़े धनी लोग भयभीत हो गए, कुछ लोग बोले हमारे घर पे आओ लेकिन हमको मोहित मत करो, ये हमारा से पैसा ले लो फिक्स अमाउंट हर महीने में, खंडनी एक्सटॉर्शन, लेकिन हमारे घर पे डिस्टर्ब मत करो, आगे लो ये पैसा ले लो और करो। राजा भी बहुत भयभीत हो गया, अरे इतनी बड़ी इनकी गैंग है, वो इतना कुशल लोग है ना, उनको पकड़ना मुश्किल है। अरे चलने आदमी के आगे सिपाही को भेजेंगे, सिपाही के शैडो पे पांव रखेंगे, सिपाही जगह पे फिक्स्ड। तो राजा भी बोला कोई बात नहीं, हम आपको हर महीने में बड़ा बंडल दे देंगे, हर महीने आके लेके जाना बस। इस तरह से 1000 लोग उनके बीच में जमा हो गए, फिर कारीगर जमा हो गए, फिर कलाकार जमा हो गए, पत्थर में कोरीव काम करने वाले, हर प्रकार के लोग उन्होंने इकट्ठा किए, केवल प्रेरणा से, हाँ त्याग और प्रेरणा से। वो लोग झोपड़ी में रहे सब लोग, जितने भी 1000 लोग थे, गांव गांव दूर दूर से आए थे वो चोर उचक के लोग। उन्होंने एक दीवार बनाया, मैंने कह रहा इनर सर्कल, उसको उनको 5 साल लगे। आप जाओ श्रीरंगम में देखो, एक दीवार जो है चौकोन दीवार जो है वो कितना बड़ा एरिया में बनाया है उसको, आप देखेंगे सबका अंदर का दीवार है वो, फर्स्ट राउंड। उसके अंदर श्रीरंगम भगवान विराजमान है, उसका विमान है उसके ऊपर, और कई 1000 खंभे है उसके अंदर पत्थर के, इतने बड़े बड़े, और ये जो अपना सीलिंग है इसके ऊपर डबल होगा वो, इतना ऊंचे ऊंचे पत्थर पूरा डिजाइन में बनाए हुए। 5 साल लगे, और 5 साल लगे दूसरा दीवार बनाने में। एक एक दीवार है ना, इतना बड़ा पत्थर है और कम से कम 50 फीट ऊंचा आकाश में, और दूसरा डेफिनेटली उससे बड़ा होगा ना, वो दूसरे एक के बाहर बना हुआ है तो उसके बाहर और चौकोन बड़ा होगा ना उसका कि नहीं होगा। ऐसे 7 दीवार का चौकोन है उधर, और 7 दीवार के हरेक के बीच में कम से कम 250 फुट जगह है, 250 या 300 फुट जगह होगी। बहुत बढ़िया रास्ता है और दोनों तरफ घर भी है पुजारियों के, और फिर भी बीच में 120 फीट का रास्ता है। आप सोच सकते हैं एक एक घर है तो यहां से लेके वो किशोर जी वहां बैठे दरवाजे तक, इससे भी लंबे घर, ऑफिसल डिपार्टमेंट है हमारा उधर का कम्युनिटी, वहां तक एक एक घर का इतना लंबाई है, दोनों तरफ इतने लंबे लंबे घर है। 7 दीवार बनते बनते कितने साल गए होंगे, 60 साल लगे उनको। तभी ये जो वंशज थे राजा धर्म वर्मा के, तभी वो 20 साल के थे जब उन्होंने मंदिर को खोद के निकाला था। पूरा जीवन उन्होंने केवल मंदिर बनाने में लगाया, तब वो 80 साल के हो गए, बूढ़े हो गए, सन्यासी, कोई शादी नहीं कुछ नहीं, केवल एक ही काम मंदिर बनाने का बस। ये न के न प्रकार है ना, मंदिर पूर्ण होना चाहिए बस। 80 साल के बाद में मंदिर का उद्घाटन हो गया, पूरा मंदिर रेडी हो गया कंप्लीट। तो सब लोग बोले, 1000 लोग चोर आए थे ना उधर, बोले हमको अपना दे दो अभी धन, आपने सब कुछ, हमने तो आपको सबको लाके दिया, तो उसका मन में था कि कुछ रखा होगा उसने अपने बैलेंस में भी, हाँ मंदिर बना के, ऐसा वो सोचते हैं ना, उनकी सोच ऐसी है कि इनको हमने पैसा दिया, उन्होंने भी अपने लिए कुछ रखा होगा बंडल बना के भविष्य के लिए। तो सब लोग आ गए, तो ये चार लोग थे मेन लोग थे ना पहले सिद्धि वाले, वो उतने खराब प्रवृत्ति के नहीं थे, तो बाकी लोग बोला हमारा हिस्सा दे दो, अभी हम जाते हैं हमारे गांव में आराम करेंगे, अभी VRS लेंगे, अभी आगे चोरी वोरी नहीं करेंगे। तो इसने एक सोने का मोहर भी अपने पास रखा नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, वो उतना ही सन्यासी उतना ही गरीब भिक्षुक था जैसे वो 20 साल की उम्र में था, 80 साल की उम्र में भी। लेकिन ये लोग गुस्से हो गए उसके ऊपर, अरे लाओ हमको जाना है अभी। तो जो मेन आदमी था ना पांच में से, वो उसको इसने इशारा किया, वो इशारे में समझ गया, वो उसने कहा कि आ जाओ। इन्होंने अपना धन जो है ना वो नदी के, कावेरी नदी के उस तरफ रखा है, मुझे पता है वो स्थान कहाँ है। उन्होंने मुझे बताया इशारे से कि इनको जाओ ले जाओ बोट से, और वहां पर जाकर वो स्थान जो है वहां से धन सबको बांटो और सबको विदा करो। सब लोग बड़ी आशा से जाते हैं उसके पीछे, हजारों लोग बड़ी बोट करते हैं, सब लोग बोट पे चढ़ जाते हैं, और ये भी बोट पे चढ़ जाता है, और बोट चलने लगती है कावेरी के उस किनारे में। बीच में बहुत भयंकर तूफान आता है, ये धर्म वर्मा के जो वंशज थे उसके प्रभाव से एक बहुत बड़ा तूफान आता है, वो सारा बोट जो है सभी चोरों को लेकर डूब जाता है, और जो व्यक्ति को उसने इशारा किया होता है वो बोट से उतरता है और चल के बाहर आता है नदी के। जिस नदी में तूफान से डूबकर सब लोग मर जाते हैं, उसमें ये व्यक्ति आराम से उतरता है और उसके लिए घुटने जैसा पानी है, वो तुरंत निकल के फिर आके धर्म वर्मा को मिलता है, और जब वो देखता है अरे सब लोग मर गए, तो उसको लगता है अरे हमने मारा उनको, बहुत दुखी होकर आता है वो। तो धर्म वर्मा के जो वंशज है जिन्होंने मंदिर बनवाया, वो कहते हैं कि डोंट वरी, ये मत समझना कि तुम्हारी वजह से वो मर गए, इनको रंगनाथ ने अपने वैकुंठ में ले गए, वो अगर वो यही रहते हैं इसी भाव भाव के अंदर, उन्होंने इतना सेवा किया है, कितने सालों तक मेरे भगवान की सेवा में मंदिर बनवाने का मेहनत किया उन्होंने, तो रंगनाथ जी ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को खत्म करके वो सब लोगों के एक साथ वो वैकुंठ ले गए, इसलिए आप कोई बुरा नहीं मानना। तो इस तरह से ईस्वी सन 800 के आसपास ये मंदिर का निर्माण हुआ। इसके बाद में ईस्वी सन 850 या 900 के आसपास में रामानुजाचार्य का अवतार हुआ, जो लक्ष्मण जी के अवतार हैं, बलराम जी के अवतार हैं, स्वयं रामानुजाचार्य, राम अनुज यानी कि राम जी के छोटे भाई, उन्होंने अवतार लिया और उन्होंने फिर लीला किया वहां पर। बहुत लंबी कथा है, पूरा श्रीरंगम जो है वो रंगनाथ जी क्षेत्र जो है वो पूरा रामानुजाचार्य की कथाओं से प्रसिद्ध है। उस बीच में एक और घटना हुई, 1322 में, 1320 साल में कुछ लोगों ने एक और जगन रंगनाथ जी का मूर्ति स्थापन किया, रंगनाथ जी का मूर्ति स्थापन किया और उसकी सेवा शुरू किया। 1322 साल में उगल खान नाम का एक मुगल राजा आया, उसने श्रीरंगम पर हमला किया, और तब वहां पर 12,000 वैष्णव रहा करते थे भगवान की सेवा में, तो उसने 11,250 वैष्णवों का शिरकांड कर दिया, पूरा सर काट दिया सबका, और उस भय से 750 वैष्णव भाग निकले और उस मंदिर में गए जहां पर कुछ साल पहले और एक मंदिर स्थापन किया गया था, उसका नाम है गोपुर पट्टी, और सब लोग जाकर वहां पर रहे। उन्होंने वहां पर रहकर पूरे वैष्णव संस्कृति का पालन किया, जतन किया उन्होंने वहां पर, और जो 11,250 वैष्णव का मृत्यु हो गया उसके लिए श्राद्ध तर्पण अर्पण किया, और आज तक इतने साल हो गए, कम से कम 1300 साल हो गए, आज भी उस गांव में उन 11,250 वैष्णवों का तर्पण किया जाता है। कुछ देर बाद उन्होंने वहां पर अच्छी तरह से रंगनाथ जी का सेवा किया, रंग क्षेत्र में पूरा मुसलमानों का राज्य था, वहां पर कोई जा नहीं पाया, वहां पर कोई सेवा सब बंद हो गई, तो सब सेवा जो है रंगनाथ क्षेत्र जो है उसका महिमा जो है पूरा वैकुंठ जो है वो गोपुर पट्टी में स्थापित हो गया। लेकिन कुछ साल के बाद में वो सेवा भी बंद हो गई और वहां पर भी मुगलों ने हमला किया और पूरा नाश कर दिया उस मंदिर का, और ऐसे कहा गया कि वो जो शेष शैया थी उसको 3 टुकड़े कर दिए और भगवान को शेष शैया से उठाकर फेंक दिया, तो उनका हाथ भंग हो गया। तो 512 साल के बाद में, मतलब 1499 में ये सब हो गया, फाइनल उसका भी नाश हो गया। 2010 मतलब ये साल के अंदर उस मंदिर का 1 करोड़ रुपया खर्च करके बहुत सुंदर तरीके से जीर्णोद्धार किया गया है, उसका भी दर्शन हमने किया। और उस गांव में आज भी पूरे रंगनाथ क्षेत्र में जितनी वैष्णव धर्म का पालन करते हैं उसका जो शक्ति है वह भी उस गांव में दिखाई पड़ता है। उसमें हर एक भक्त जो निवासी है वो भगवान का भक्त है। यहां पर एक फोटोग्राफ है सफेद दिखता है आपको, हर एक 7 दरवाजे है ना, 7 दीवाल है और वो चौकोन है। तो एक पूर्व में एक गेट है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में, एक उत्तर में है। तो हर एक दरवाजे चार दिशा में 4 दरवाजे है ना, तो 4 दिशा में 7 दीवाले जो है उसमें 4 ऐसे बनाए हैं गोपुरम, इसको बोलते हैं गोपुरम बोलते हैं इसको, गोपुरम मतलब बड़ा घुमट बनाते ना ऐसे बहुत कलाकुसर का। तो कम से कम 28 से 30 या 35 वहां पर ऐसे गोपुरम है। तो एक गोपुरम है वो सफेद रंग का है, तो कहते हैं व्हाइट गोपुरम। उसकी कथा ऐसी है कि जब मुसलमान लोगों ने हमला किया उधर रंग क्षेत्र के ऊपर और वो जाना चाहते थे कि अंदर क्या है इसके, हमको बताओ उसके अंदर कहां कहां धन छुपा हुआ है, कहां कहां क्या क्या है। तो एक साध्वी थी सफेद वस्त्र पहनी हुई, वो देख रहे थे कि ये सब लोग नाश करने वाले हैं। तो वो पूछ रहे थे कहां है बताओ उसके अंदर क्या, कितना बड़ा भव्य मंदिर था ना वो। तो उसने कहा मैं आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ इस गोपुर में आप चढ़ो, इसके ऊपर जाके मैं आपको दिखाऊंगी सब जगह कहां कहां क्या क्या रखा है। तो वो उस आदमी को, उस सरदार को इसके ऊपर ले गई, वो भी उसको लगा कि मेरे को सब बताएगी वो। तो सब वो चढ़ चढ़ के ऊपर गए दोनों, और ऊपर दिखाने के बहाने इस औरत ने क्या किया, उस सरदार को ऊपर से नीचे से फेंक दिया, तो वो नीचे पड़ के गिर गया, वो मर गया। उसको नीचे उतारने के बाद में उसको बहुत पछताता हुआ, अरे मैंने उसको मार दिया। तो इसने भी ऊपर से छलांग लगाई और उसका भी देहांत हो गया, लेकिन उसने जो वीरता दिखाई, इतना धैर्य दिखाया, इतने बड़े सरदार को वो ऊपर तक लेके बुला के ऊपर लेके गई, वहां से पटक दिया। तो उसकी स्मृति में ये जो गोपुरम है ये आज भी सफेद रंग का बनाया गया है, व्हाइट गोपुरम। और मैंने किताब यहां पर रखा है याद रखने के लिए क्या क्या बताना है आपको। जो श्रीरंगम की मूर्ति है वो लेटी हुई है, मैंने आपको पहले बताया, एक हाथ सिरहाने हैं, एक हाथ पैर की ओर है। आ जानू बाहू उनका हाथ है, मतलब क्या, उनकी बाहू जो है वो जानू मतलब घुटने से भी लंबी है, भगवान का दिव्य पुरुष का लक्षण होता है। उनका हाथ जो है कंधे से लेकर हमारा जो है वो आधे घुटने तक खत्म हो जाता है, अपना हाथ आधे जंगा में खत्म हो जाता है, भगवान का हाथ घुटने तक पहुंचता है। आप देखिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत और कृष्ण भगवान बलराम जी सबके हाथ, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु सबके हाथ ऐसे लंबे लंबे थे, अजानु बाहु कहते हैं उसको। तो इनका हाथ जो है वो घुटने से भी नीचे पहुंचता है, हमने देखा, हाथ में अंगूठियां पहनी हुई है, पैरों में बहुत सुंदर अलंकार पहने हुए हैं, 5 शेषनाग के फन है, उस पर सोने के मुकुट पहने हुए हैं, भगवान मुकुट पहने हुए हैं, हीरों के जेवर पहनते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, उनके यहां पर लक्ष्मी का चिन्ह है बड़ा सोने का, लेटे हुए भगवान है। और करीब करीब मेरे ख्याल से 25 फुट तो मूर्ति लंबी होगी, 20-25 फुट तो होगी, और बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, और उनके सामने खड़े भगवान हैं, उसको उत्सव मूर्ति कहते हैं। उत्सव मूर्ति को कहते हैं कस्तूरी रंगनाथ। कस्तूरी रंगनाथ के ऊपर यहां पर एक डायमंड है और उनको कस्तूरी लगाते हैं, श्रृंगार करते हैं उनका। उसके बाजू में उनको देखते हुए 2 देवियां हैं, भूदेवी और रंगदेवी, श्रीदेवी और भूदेवी, लक्ष्मी जी का स्वरूप है ये, उनकी उत्सव मूर्ति, ऐसा पूरा दर्शन है। जब हमने दर्शन किया 1 जनवरी को, तभी भगवान कस्तूरी रंगनाथ ने हीरों का मुकुट पहना था, उसकी इतना सा मुकुट था, उसकी कीमत 1 करोड़ रुपया। वो हीरो का मुकुट जो है धर्म वर्मा के उस वंशज ने बनवाया था जिसने वो मंदिर बनवाया था, और तब से लेकर उतने सालों से वो संभाल के रखा हुआ है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मतलब समय के प्रभाव से उसमें कुछ नुकसान नहीं हुआ है, और आज भी विशेष दिनों में वो भगवान की सर्प धारण करते हैं उसको। ऐसा रंगनाथ जी का अनोखा महिमा है। और श्री रंगनाथ जी के दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन लगती है, पूरा अद्भुत मंदिर है वो, अंदर इतने स्थान है उसके, मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगा। एक अंदर स्थान है उसका नाम है चंद्र पुष्करिणी, चंद्र पुष्करिणी का मतलब है चंद्र देवता का उधर कुंड है बड़ा एक, और दक्ष राजा को 27 कन्या थी, जो नक्षत्र के रूप में प्रसिद्ध है ना, रोहिणी, उत्तरा भाद्रपदा, जो नक्षत्र है ना अपने, भरणी, वो सब दक्ष राज की 27 कन्या थी, वो नक्षत्र के रूप में वो प्रसिद्ध है। उसमें जो एक कन्या थी रोहिणी, उसके रूप से चंद्र देवता बहुत मोहित हो गए थे। तो बाकी 26 कन्याओं ने दक्ष राजा को कंप्लेंट किया कि हमारी बहन रोहिणी जो है उसके ऊपर इनका ज्यादा स्नेह है, ये हमें पसंद नहीं है। तो दक्ष राजा को कुंधक गुस्सा आया, बहुत। दक्ष राजा को प्रजापति है ना, ही इज अ बिग देन बिगर देन चंद्र ऑल्सो। तो प्रजापति दक्ष ने शाप दिया चंद्र को कि तुम्हें टीबी हो जाएगी, उसको कहते हैं राज यक्ष्मा, यानी कि मॉडर्न डे ट्यूबरकुलोसिस, कॉक्स डिसीज। तो तुरंत चंद्रदेवता रोग से ग्रस्त हो गए, तो शंकर जी का आश्रय लिया उन्होंने। तो शंकर जी ने उनको लाया चंद्र पुष्करणी में, उस मंदिर के बीच में जो सरोवर है उसमें उनको स्नान कराया, और वहां पर से लेकर वो उडुपी लेके गए उनको। उडुपी वहां पर एक मंदिर है चंद्रमौलेश्वर, चंद्र को जिन्होंने अपने सर पे धारण किया वो चंद्रमौलेश्वर शिव जी भगवान, और चंद्र भगवान को उन्होंने बहुत उनका परिचर्या किया है, मतलब सेवा, यानी कि नर्सिंग किया उनका। तो चंद्र भगवान जो है फिर चुस्त हो गए, रोग से मुक्त हो गए, दक्ष राजा के शाप से भी मुक्त हो गए। वो स्थान वहां पर है। बीच में एक स्थान है, समय तो हो गया अभी, फिर भी एक कथा बता देंगे आपको। बीच में एक स्थान है, उसका नाम है शरणागति। वो शरणागति स्थान में कुछ नहीं है, खाली एक मंडप है ऐसा, कुछ समझ में ना आता क्या है। उसके पहले बताता हूं उसके अंदर क्या है। जहां पर लाइन लगती है वहां पर एक चित्रगुप्त का मूर्ति है, और उसके बाजू में यमराज की मूर्ति है। और वो वहां क्यों खड़े हैं कि जो जो लोग रंगनाथ में आते हैं रंग भगवान के दर्शन करने के लिए, उनका फाइल डिलीट करने के लिए खड़े हैं। वो सबका हिसाब किताब लेके खड़े हैं। वो आ गया उसका फाइल आउट, उसका आ गया उसका फाइल आउट, वो सब डिस्कार्ड करने के लिए खड़े हैं वहां पर वो। इसलिए वो लाइन जो है वहीं से निकलती है, वो सबको देखते हैं कौन कौन आया है। वरदान क्या है, श्री रंगनाथ क्षेत्र में जो भी पहुंचेगा वो दोबारा जन्म नहीं लेगा इस पृथ्वी पर, इस 14 लोगों में अंदर, और ब्रजा को पार करके वैकुंठ में प्रवेश करेगा, ऐसा वरदान है। इसलिए वो सबको वैकुंठ में फ्री पास देने के लिए खड़े हैं वो, कि भाई इनका रिकॉर्ड जो है ना वो भी आ गया, राजा रमन आउट, देवन संघ आउट। और अगर उनसे हाथ से अगर कुछ छूट गया समझो बाय मिस्टेक, क्योंकि अजामिल का ऐसे हुआ था, अजामिल का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा रिकॉर्ड जो है ना उनका एड्रेस गलत हो गया था, उनको भेजा गया उनके पास, लेकिन उन्होंने प्रभु का नाम लिया, तुरंत विष्णुदूत वहां पर आ गए, तो वो कंफ्यूज हो गए, अरे एड्रेस सही है लेकिन हम लोग पता नहीं कहां आ गए। तो वो गड़बड़ ना हो जाए इसलिए और चार लोग खड़े करके रखे, एक हाथी है, एक कछुआ है, एक मछली है, और एक पत्थर में से है। वो फिर वो रिकॉर्ड को रिकनसाइल कर देते हैं, समझो इनका अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो भी ये रिकॉर्ड को बता दे कि हमने इनको देखा है श्री रंग के मंदिर में। उनका सबका उद्धार हो जाता है। ऐसे बहुत अद्भुत स्थान है वहां पर। तो शरणागति का क्या स्थान है कि एक बार एक औरत जो श्रीरंगम में अपने बेटे को पुकारती, बेटे का नाम श्रीरंग रखा था उसने, ए श्रीरंग जाओ खाने को आ जाओ, भोजन करने को आ जाओ। तो हमारे रंगनाथ जी गए उनके घर पे, भोजन किया अच्छी तरह से लड़के के साथ में, बहुत प्रेम से माता ने भोजन किया उनको। तो माता बोली अरे आए हो रंगनाथ, अपना घर छोड़कर आए हो, रहो एक दिन हमारे पास। तो वहां पर एक और एक प्रति रंगनाथ है, वहां पर एक लक्ष्मी देवी का और एक विस्तार है पद्मा देवी। पद्मा देवी उनको बोलती है हमारे पास रहो एक दिन। सब लक्ष्मी भगवान की पत्नी है ना, रंगनाथ जी की 9 पत्नियां हैं ऑफिशियल रंगनाथ के अंदर, उनके 9 मंदिर वहां पर मंदिर के क्षेत्र में अंदर ही है। लक्ष्मी जी का मेन मंदिर है और इनका भी मंदिर सब पद्मा देवी है, बहुत सारी देवियों का मूर्ति है, एक देवी बाहर भी है। तो एक रात वहां रुकते हैं और उस लक्ष्मी के साथ में संग करते हैं, शयन करते हैं, तो उनके शरीर में पूरा हल्दी लगता है, पूरा हाथ लगाए हुए चिन्ह दिखाई पड़ते हैं। तो अगले दिन लौट के आते हैं रात भर वहां रहकर, तो लक्ष्मी को पता चलता है अरे मुझे बोले बिना वहां चले गए। तो उनको गुस्सा आता है और रास्ते पर रोक लेती है, चलो यहां से ही हटो, यहां से वापस नहीं आना है, वहीं जाकर रहो जहां पर रहे थे। और ये क्या है सब तुम्हारे शरीर पे, हल्दी का चिन्ह है, ये स्क्रैच मार्क से, ये सब जो खरोच है ये कैसे है। बोलते देखो ऐसा है ना, मेरा जो अवतार हुआ है वो केवल भक्तों का उद्धार करने के लिए हुआ है, मेरे को एक ही काम है खाली, बस जहां जहां जाता हूं वहां भक्तों की रक्षा करता हूं। वो जहां मेरा भक्त संकट में था वहां जंगल था, बहुत कांटे थे, बहुत कुछ कुछ था, मुझे वहां जाके उसकी रक्षा करनी पड़ी। तो सब वो कांटों का मार्क है ये सब। तो हल्दी का कैसा लगा फिर आपको सब लेप, उसको पता है वो लक्ष्मी देवी का, पद्मा देवी का जो हल्दी है इनको शरीर में जब आलिंगन दिया तो सब लगा है, उनको पता है, तो बहुत सारे बहाने बताते हैं वो। और वो कहते हैं बाद में, अरे देखो मैं पूरे ब्रह्मांड का, पूरे निर्माण का मैं राजा हूं, आई एम द किंग ऑफ ऑल क्रिएशन, और तू मुझे रस्ते पे खड़ा करके सबके सामने ऐसा प्रश्न पूछती हो, इतना मुझे एम्बरेसमेंट है, कितना संकोच है मेरे लिए। हाँ थोड़ा सा तो सोचा करो, अंदर कम से कम ले लो और फिर प्रश्न पूछो। बोला नहीं नहीं, सब पूछना यही पूछेंगे। तो सब संत मुनि नारद मुनि वगैरह भेष बदल के आते हैं, वो सिफारिश करते हैं भगवान के, भगवान के भक्त है ना वो। अरे भगवान संकट में है अभी, वो क्या करना है, क्योंकि तो भगवान भी संकट में आ जाते हैं जब उनके प्रेमी भक्त जब उनको प्रेम से कुछ संभव करते हैं, लक्ष्मी देवी जैसे भक्त जो है, तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, असहाय हो जाते हैं। तो नारद मुनि जैसे बहुत सारे भक्त वहां जमा होते हैं और भेष बदल कर उनसे बात करते हैं। लक्ष्मी देवी कहते हैं देखो ऐसा है, ये कुछ ऐसा कुछ गलत उन्होंने काम नहीं किया है, ये सब उनका ही सृष्टि है, सब उनके ही भक्त है, उनकी सेवा के लिए, उनके आनंद के लिए बहुत मेहनत करते हैं भगवान, तो इनको अभी आप सब भूल जाओ, आप इनको ले लो अंदर। तो बहुत बार दरवाजा बंद करने पर, खटखटाने पर, फिर खोलने पर, फिर बहस, फिर चर्चा, फिर बहस, फिर बंद, फिर ख्वाहिश, ऐसे करते करते आखिरी बार मान जाती है वो। एक ही मेरी कंडीशन है कि आज मैं तुम्हें यहां पर स्वीकार करती हूं, तुम्हें मेरे साथ यहां खड़ा रहना है और एक वादा करना है कि जो भी उस दिन, आज के दिन यहां पर आएगा, उस सबको तुमको कृपा देनी है। क्योंकि रंगनाथ जी के रूप में वो बड़ी आसानी से कृपा देती नहीं है, लेकिन लक्ष्मी देवी जो है ना, वो लक्ष्मी जो वहां पर विराजमान है, ऐसा कहा गया है वो सबसे दयालु लक्ष्मी देवी है। राधा रानी एक्चुअली वहां पर लक्ष्मी के रूप में विराजमान, राधा रानी एक नील देवी के नाम के रूप में भी वहां विराजमान है। एक श्री देवी है, एक भू देवी है और एक नील देवी, एक उनका दर्शन है वहां पर, भगवान बैठे हैं एक जगह पर, दो माताएं, दो रानियां और एक जगह पर एक रानी बैठी है। जब भी कोई भक्ति याचना करता है तो पहले दो तीन रानियों को देखते हैं, उन्होंने हां कर दिया तो कृपा कर देते, ऐसा है उनका कृपा। वो कहते हैं लेकिन शरणागत गति के दिन, आज के दिन जो भी यहां पर आएगा सबको तुम कृपा करोगे। उसके पहले वो बोलते हैं, जब वादा वाद विवाद में बोलते हैं कि मैं देवताओं को सबको लेके आऊं क्या प्रूफ कहने के लिए, मैंने कुछ नहीं ऐसा किया है, क्योंकि चंद्र सूर्य जो है सबकी आंख, उनकी आंखें सब जगह रहती है, बताएंगे हमने कुछ गलत काम नहीं किया। बोले क्या है, वो सब तुम्हारा ही सेवक है, वो तुम्हारे पक्ष में बात करेंगे। सूर्य को बुला के फायदा क्या है, वो तो तुम्हारा ही सेवक, तुम्हारे तुम्हारी केवल इच्छा मात्र से वो कक्षा में भ्रमण करते रहते हैं, वो क्या तुम्हारे खिलाफ आके बोलेंगे, क्या सबूत देंगे और क्या गवाही देंगे, कोई हमको गवाही खड़े करने जरूरत, सब तुम्हारे ही, सब क्या हुआ है कहते ना वो, तुम्हारे ही पक्ष के लोग है सब। तुम्हारे गुट के लोग है सब। आखिर में फिर वो शरणागति के दिन वहां पर दोनों आते हैं, लक्ष्मी देवी नीचे खड़ी रहती है, नीचे बैठती है, और कस्तूरी रंगनाथ जो उत्सव मूर्ति है वो भी खड़े रहते हैं, उनका श्रृंगार करके दिन भर जो भी आते हैं उन पर वो परम भक्ति की कृपा कर देते हैं। तो रंगनाथ भगवान की, इसलिए रामानुजाचार्य जो है वो उस दिन में वहां पर गए थे, उस दिन उनके अवतार होने के बाद में उस दिन का वेट करके साल भर वो उस दिन वहां पर दर्शन लेने गए थे रंगनाथ जी की कृपा लेने के लिए। इसका मतलब क्या होता है, भगवान बड़े शक्तिशाली है लेकिन कृपालु जो है वो उनकी पत्नी यानी कि उतनी सखी, कृष्ण के रूप में राधा रानी और नारायण रंगनाथ के रूप में लक्ष्मी जी, उसकी ही कृपा से रंगनाथ नारायण भगवान कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, दो चार दिन में आपको कम पड़ेंगे पूरा खाली रंगनाथ मंदिर को दर्शन करने के लिए। तो इस तरह से और क्या बचा, रंगनाथ जी के ऐसा कथा है कि अभी मैंने दर्शन किया उधर, एक अंडाल नाम का हाथी है, हथनी है हथनी, वो अपनी सुंड से वो होता है ना हारमोनिका, मालूम है हारमोनिका क्या होता है, बाजा, बाजा जो मुंह से बजाते ना, ऐसे बजाते ना मुंह से, वो हाथी अपने सुंड से वो बजाता है। तो जब दर्शन हुआ 31 तारीख को, सब हमारी मंडली जो है वहां पर संकीर्तन करने गई थी, तो उस दिन महाराज के सामने उस हाथी ने बाजा बजाया सबके लिए। सब लोगों ने उसका आनंद लिया। तो एक काली गाय है, एक सफेद घोड़ा है। रंगनाथ जी सुबह उठते हैं 4 बजे, तो सबसे पहले ये काली गाय का जो पार्श्व भाग है उसका दर्शन करते हैं, क्योंकि गाय के पीछे के हिस्से में लक्ष्मी जी का निवास है, इसलिए वो काली गाय को सजाकर उसके ऊपर हल्दी कुंकू लगाकर पूरा वो उसका पार्श्व भाग का दर्शन पहले रंगनाथ जी को कराते हैं, फिर सफेद घोड़े को लेकर आते हैं। इतना सुंदर घोड़ा है वो, आप देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, इतना पवित्र लगता है उसको देख के। और फिर ये हाथी जो है जाके घंटी बजाएगा। यही हाथी जो है वो जब भगवान ने गजेंद्र मोक्ष किया ना इतिहास में, उसकी एक तिथि है, मुझे पता नहीं कौन सी तिथि है, लेकिन उस तिथि के दिन ये हाथी जाता है कमल का फूल लेकर कावेरी नदी में, अपना पैर उसमें डुबाता है। कस्तूरी रंगनाथ की मूर्ति उत्सव से बहुत मेरवणुक लेकर उसको वहां लेके जाते हैं, और कस्तूरी रंगनाथ को जो उत्सव मूर्ति को ये हाथी जो है वो कमल अर्पण करता है और सब लोग वापस लौट के आते हैं। गजेंद्र मोक्ष की लीला की स्मृति में ये लीला वहां पर होती है, ऐसा उत्सव मनाया जाता है। और वहां पर राम जी की मूर्तियां हैं, वहां पर एक कुलशेखर नाम के राजा हुए हैं उनकी वहां पर मूर्ति है, बहुत लंबी कथा है उनकी, अलवार है वह कुलशेखर अलवार, अंडाल नाम का अभी अलवार थी एक माता थी, और रामानुजाचार्य की कथाएं हैं, फिर कुरेश और दाशरथी उनके शिष्य हैं उनकी कथाएं हैं। इस तरह से श्रीरंगम क्षेत्र जो है वो भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाओं से संपन्न है और समृद्ध है। बोलो श्री रंगनाथ भगवान की जय हो। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।